हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 32। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीका कान्ता श्रीराधाकान्तनमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अष्टदशो अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक नंबर 32। कृपया मेरे साथ साथ इस श्लोक के पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थतामसी। कैसे? अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सापार्थतामसी। फिर से, अधर्मं धर्ममिति या मन्यति तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थतामसि. वन्स् लास्ट्. अधर्मं धर्ममिति या मन्यति तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थतामसि. शब्दों का अर्थ देखिए. अधर्मम यानी अधर्म को, धर्मम यानी धर्म, इति यानी इस प्रकार, या माना जो, मन्यते यानी सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अधर्म को धर्म समझकर धर्म समझते हैं या धर्म की तरह सोचते हैं, मन्यते तमसावृता, ऐसे तमसा माना भ्रम से, वो भ्रमित होते हैं, इसलिए तमोगुण में होते हैं, भ्रम होता है उनको यानी गुमराह हो जाते हैं, इसलिए अधर्म को धर्म समझते हैं. और आगे बताया वृता, वृता आवृता का मतलब आच्छादित यानी ढक गया है, वो भ्रम से ढक गए हैं, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है. बुद्धि तमोगुणी हो जाना माना, अब देखो तमोगुण का क्या मतलब होता है, अंधकार. तमोगुण का मतलब होता है अज्ञान. अब वो बुद्धि क्या जिसके अंदर खाली अंधकार और अज्ञानी भरा हुआ, तो इसको कहते हैं कि ये तमसावृता यानी अंधकार से या गुमराही से ढक गई है. सर्वार्थान विपरीताश्च, सर्वार्थान का मतलब होता है सारी वस्तुओं को विपरीतान उल्टी दिशा में, जो भी उसके सामने आता है ना उसके अंदर उसको उल्टा ही नजर आता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान तो होता ही नहीं है ना, तमोगुण में होते हैं वो, अंधकार में होते हैं. तो सर्वार्थान विपरीताश्च ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में उल्टी बुद्धि रखते हैं. और आगे बोलते हैं बुद्धि सा पार्थ तामसी. ए पार्थ, भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र ऐसी बुद्धि तो तमोगुणी होती है. अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी बुद्धि है. भगवान श्री कृष्ण आज हमें तमोगुण वाली बुद्धि के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होती है. जो कि चलो धर्म ना करना इतना खतरनाक नहीं है जितना अधर्म को धर्म समझकर करना ज्यादा खतरनाक है. तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये तो वो बुद्धि होती है तमोगुणों की, जो अधर्म को ही धर्म मानकर सब कुछ जो कर रही होती है वो उल्टा ही कर रही होती है. सत्वगुण के एकदम विपरीत अपोजिट होती है ये बुद्धि जो तामसी होती है. श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा शुभपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है. बस जो भी रियल होता है ना, जो सही होता है, पॉजिटिव वेव में उसको सोचना आता ही नहीं है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करती है, उल्टी दिशा में काम करती है. यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है. श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बुद्धि जब किसी के अंदर आ जाती है ना तो वास्तविक धर्म को जुटलाती है. वास्तविक धर्म क्या है? सबसे बड़ा अंधकार, तमोगुण अंधकार है. और अंधकार में हम क्या भूल जाते हैं? हमारे रियलिटी भूल जाते हैं. और इसका गुण क्या है? पागलपन. इसे भगवान श्री कृष्ण ने तमोगुण के गुण जब बताए ना, मतलब तमोगुण की क्या क्वालिटीज होती है, तमोगुण जब इंसान के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था 14.9 में, चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 9 के सेकंड लाइन में हम देखेंगे ना, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. कि तमोगुण जब आपके अंदर या किसी भी जीव के अंदर आ जाता है तो सबसे पहला क्या होता है? ज्ञानम आवृत्य. जो भी ज्ञान वास्तव में ज्ञान है लेकिन तमोगुणी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। जब तमोगुण हो जाता है तो क्या कर देता है, उसका रियल जो ज्ञान होता है उसको ढक देता है और उसको पागल बना देता है, पागलपन से बांधता है, यानी कि पागल बना देता है। और पागल का क्या अर्थ है, कोई पागल है तो उसका क्या अर्थ है, सिर्फ और सिर्फ यही कि वो अपने को भूल जाता है। ठीक है ना, पागल का मतलब यही होता है कि वो अपनी बात, अगर उससे पूछो कि आप कौन हो तो उसे पता नहीं होगा कि वो कौन है। जैसे अगर हम लोग सड़क पे जा रहे हो तो दो लोग उधर से आ रहे हो, एक चुप करके आ रहा हो तो हमें नहीं लगेगा ना कि वो पागल है, लेकिन दूसरा उसके साथ जो व्यक्ति है वो जोर जोर से चिल्ला रहा हो कि मैं इस भारत भूमि का वाइस प्रधानमंत्री हूँ या प्रेसिडेंट हूँ और आ जाओ मेरी बात सुनो मैं भाषण दे रहा हूँ, एकदम सीरियस होके भी अगर वो कहेगा तो हम क्या कहेंगे कि बेचारा पागल हो गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, वो प्रेसिडेंट है, यानी कि अपनी रियल स्थिति को भूल गया है इसलिए वो पागल है। उसी प्रकार से हमें शास्त्र क्या कहता है कि आप सब क्या हो, आत्मा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, तो भगवान श्री कृष्ण ने तकरीबन इतने सारे श्लोक्स में बताया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी यदि हम कहते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से अपने आप को जाहिर करते हैं तो हम पागल हैं शास्त्र की नजर में, क्योंकि ज्ञान यही है। अब ज्ञान जो है वो चार जुमलों में ही पूरा हो जाता है, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। पहला, आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। दूसरा ज्ञान, आत्मा का कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तीसरी लाइन और चौथी लाइन क्या है कि आप भगवान की सेवा इस कलयुग में केवल श्रवण और कीर्तन के जरिए कर सकते हो, भगवान की कथाओं का श्रवण करना और महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हमारा वास्तविक धर्म है। यदि हम इस धर्म को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है वो धर्म को मान रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने लोग इस धर्म को अधर्म मानते हैं, बोलते नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना 18.32 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान ने क्या कहा है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सापार्थ तामसी। जो अधर्म है उसको धर्म मानता है और जो धर्म है, जो वास्तविक आपका जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसको अधर्म मानता है। इवन जो भगवान की भक्ति करते हैं, खुद नहीं करता है वो कि खुद ना करे, लेकिन जो करता है उनको भी बोलता है कि आप ये अधर्म कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ी ये कोई तरीका है, सारा दिन हरे कृष्णा करते रहते हो माला उठा के, आप नहीं करो। और भी अपनी बुद्धि से उल्टा हमेशा विपरीत दिशा में सोचता रहता है और वो खुद क्या करता है, ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने 17.4 में कि तमोगुणी लोग पूजा किसकी करते हैं। भगवान कहते हैं प्रेतान भूतगणाशन्ये यजन्ते तमसाजना। जो तमोगुणी होते हैं वो भूतों और प्रेतों की पूजा करते हैं, यानी कि उनको खबर नहीं है पूजा किसकी करनी चाहिए। रजोगुणी फिर भी बेटर है कि उन लोगों को अपनी खुशी तो होती है कि वो अपनी खुशी के विषय में तो सोचते हैं कि चलो ठीक है देवताओं की पूजा करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ पर भी पूजा कर रहे होते हैं तो शुद्ध जीवन होता है उनका, और उधर जाकर भी देवताओं के पास भी स्वर्ग में जाकर रहते हैं, या फिर यहाँ पर भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सुविधाएं तो प्राप्त करते हैं ना, लेकिन उस लोग अंधकार में होते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि भूतों और प्रेतों की पूजा करके वो यहाँ पर भी ऐसी गंदी उनको करनी पड़ती है, उनकी पूजा के तरीके रूल्स भी इतने खराब होते हैं। इसने बताया भी है श्री प्रभुपाद ने, अगर हम इसके तात्पर्य को देखेंगे ना, जो सेकंड पेड़ा है ना उसकी सेकंड लाइन को देखिए, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और जो तमोगुणी हैं वो अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं, कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर जाकर पूजा करते हैं, यानी कि कितना तमोगुण। अभी वो बेचारा खुद मर गया वो तुम्हें क्या करेगा, अभी वो तो मर ही गया, वो तुम्हारी सहायता कैसे करेगा, लेकिन बोला कब्र पे जाकर मृत प्राणी की पूजा करते हैं और पता नहीं कितनी गंदे तरीके होते हैं उनके पूजा के, और आगे भी बताया शबवा ने मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर भूतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं। तो जो अधर्म है ये मैथुन सेवा या फिर ये भूतों प्रेतों की सेवा अधर्म है, ये नहीं करनी होती है। हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो इतने उनका ज्ञानम आवृत्यम, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो ढक जाता है मोह के कारण, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। और आगे श्री बाबा जी यहाँ तक कहते हैं कि हमने देखा भी है, श्री बाबा को एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने देखा है इस चीज को कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है, ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुष के लिए होती है, यानी कि ये जो तमोगुणी लोग होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ अंधकारमय होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, उनका ज्ञान तो पूरा ढका हुआ होता है, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। ये कोई तरीका होता ही नहीं है पूजा का, और ऐसा अगर करेंगे तो फिर वो जिनों और भूतों के साथ उनको दुखमय जीवन गुजारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं लोग। और इस तमोगुणी बुद्धि के लोग क्या क्या कार्य करते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 8 में बड़े डिटेल से बताया है। भगवान ने कहा तमस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निभत्नाति भारत। हे भारत, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, यानी कि ये जो तमोगुण है वो सिर्फ और सिर्फ मोह है। अब इसके अंदर जो बुद्धि है तमोगुण के, यानी कि मोह के अंदर जो बुद्धि है वो डिसीजन कैसे ले सकती है? बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और अगर वो ऐसी जगह पर बुद्धि इतना ढकी हुई है मोह के साथ, अंधकार के साथ, अज्ञानता के साथ, तो वो सही डिसीजन कैसे ले सकती है? तो यहाँ पर श्री गोपाल जी बता रहे हैं कि जीवों का मोह है, इस गुण के प्रतिफल पागलपन आलस्य नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। फल क्या होता है इसका? पागलपन। सबसे पहला वो पागल है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि मेरा कल्याण किस में होगा, तो फिर वो आलस्य नींद इत्यादि से बंध जाता है। यानी कि तमोगुण के अंदर रहकर जो डिसीजन करेगी जो बुद्धि, वो आपको कभी भी सही दिशा में नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि क्या है? सारथी है। और सारथी यदि अंधकार में है, यदि सारथी अंधा है, तमोगुण का मतलब एक तरह से अंधा भी हो सकता है, तो अंधा है, वो डिसीजन नहीं ले सक रहा है, तो वो अपनी इंद्रियों को यानी कि अपने इस रथ को किसी खड्डे में गिराएगा, किसी आग में गिराएगा, किसी वृक्ष या पर्वत से उसका गिराकर उसका सत्यानाश करेगा, बारंबार पशु योनि में उसको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने बताया भी है, आगे हम पढ़ते हैं, पहले हम इसके तात्पर्य को थोड़ा देखेंगे। चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 8 में श्री प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत ही विचित्र गुण है। यहाँ पर लिखा हुआ ना तमस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिन त्व, लिखा है तमस्त्व, तो इस तु का शब्द श्री प्रभुपाद जी बोले लेकिन बोला, लेकिन ऐसे नहीं अफसोस करके बोलते हैं। रजोगुण और सत्वगुण का जब भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया तो अफसोस करते बता रहे हैं तमस्त्व ज्ञान, अरे ये इतना तमोगुण तो इतना अज्ञान वाला है। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसका अर्थ है तमोगुण देहदारी का अत्यंत विचित्र गुण है। समझ में हैरत की बात है कि उसको ना यहाँ सुख मिलेगा ना वहाँ सुख मिलेगा, ना उसका डिसीजन सही है और ना ही उसका रास्ता सही है और ना ही उसका लक्ष्य सही है, फिर भी वो कर रहा है, इतना तमोगुण वाला इंसान है वो। यह तमोगुण के सर्वथा विपरीत, यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। अब सत्वगुण क्या है? ज्ञानमय है, उसमें हमको प्रकाश प्राप्त होता है और हम डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो बुद्धि सत्वगुण में डिसीजन ले सकती है। लेकिन तमोगुण बिल्कुल विपरीत यानी अपोजिट है। सत्वगुण में ज्ञान का के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत है। जो भी तमोगुण के फेरे में पड़ता है वह पागल हो जाता है और पागल पुरुष यह नहीं समझ सकता कि कौन क्या है। शिव बाबा जी बोलते हैं सबसे बड़ा तमोगुण सबसे बड़ा क्या होता है कि वो पागल हो जाता है और ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। ना भगवान को समझ सकता है, ना अपनी रियल स्थिति को समझ सकता है, ना योनियों को समझ सकता है, ना अपने आने के कारण को समझ सकता है, ना ही अपने सुख के विषय में समझ सकता है। बस उसको प्रयत्न, देखो रजोगुण में क्या होता है, फिर भी परिश्रम करता है ना मनुष्य, परिश्रम कर रहा होता है इस संसार में ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करे और इस संसार में सुखी रहे, या फिर दूसरा परिश्रम करता है कि देवताओं इत्यादि की पूजा करता है, मतलब ऐसे पूजा उजा करता है ताकि वो स्वर्ग में जाए। और फिर रजोगुण जब बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तो फिर वो इस तरह पूजा करता है कि मैं ना मतलब आगे मेरी लाइफ अच्छी हो ये सोचकर फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करता है, लेकिन कंटिन्यूस प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है। लेकिन ये तो क्योंकि ना अपनी इस लाइफ को सुधार सकता है और ना ही बाहर पीछे वाली आगे वाली लाइफ को सुधार सकता है, इसलिए वो पागल होता है। कुछ भी इतना आलस्य लिखा हुआ है, प्रमाद आलस्य निद्रा, उसके अंदर प्रमाद होता है, पागलपन होता है, आलस्य होता है, सुस्ती होती है, निद्रा होती है, डिसीजन तो बुद्धि कर ही नहीं सकती है, इसलिए सारा दिन पड़ा रहता है। आगे श्री रूपा ने बहुत ही दुखदायक बात बताई है कि वह प्रगति करने की बजाय अधोगति में चला जाता है। और भी अधोगति यानी कि प्रगति क्या है कि आप जिस स्टेज से हो उससे आप आगे बढ़ो, लेकिन वो और भी नीचे जाता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तु यथात्म्य ज्ञानावरकम् विपर्य ज्ञान जनकम् तमाह। क्योंकि वो ज्ञान ऐसा अज्ञान होता है, अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो इतनी तमोगुणी हो जाती है कि वो तमोगुण मतलब अज्ञान के वशीभूत हो जाती है और किसी भी वस्तु को सही तरह से नहीं देख सकती है और उसकी रियलिटी को नहीं समझ सकती। क्यों? वस्तु यथा ज्ञानम वरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमः, क्योंकि वो तमोगुण से बंधी हुई बुद्धि होती है तो वो बुद्धि आपको कोई भी चीज सही देखने की परमिशन ही नहीं देती। ज्ञान के अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथा रूप में नहीं समझ पाता है। उदाहरणार्थ शिव बाबा जी उदाहरण देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि इसका बाबा मरा। अब ये कितनी हैरत की बात है, सबको पता होता है कि डेथ होनी है। अब पहले यही हमारे जीवन का एकमात्र सत्य है, इसके अतिरिक्त हमारी कोई प्लानिंग सत्य हो या ना हो उसमें संदेह हो सकता है, लेकिन मृत्यु सर्वस्व सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यही हमारे जीवन का कि मृत्यु होनी है। क्योंकि हमारे पिताश्री का जिसे ये बोलते हैं इसका बाबा मरा अतएव वह भी मरेगा, जिसके बाबा भले वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसने डॉक्टर को भले 1 करोड़ रुपए की ऑफर दी हो कि मुझे मरना नहीं है, मैं आपको 1 करोड़ या 10 करोड़ दे देता हूँ, मुझे फिलहाल नहीं मरना, भले 4-5 महीने के बाद मरना, लेकिन मृत्यु जिस समय आनी होती है उस समय आ जाती है, वो आपकी किसी भी अपील को नहीं सुनती है, कोई भी आपका जो रिश्वत है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको आना ही है। तो इसका मतलब है हमें ये देखना चाहिए ना कि वो जब मरा है तो डेफिनेटली कल मैं भी मरने वाला हूँ, फ्यूचर तो मृत्यु है ना, फिर अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो मृत्यु के लिए करनी चाहिए ना। लेकिन मनुष्य आज का मनुष्य, बल्कि ये कहा जाए कि संपूर्ण मानव जाति आज तमोगुण में गिरी हुई है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ जाना है उसके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर रही है, कोई भी उसके लिए प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी, बल्कि आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो कल मैं उसे कैसे 2 लाख रुपए बनाऊं और परसों मैं इसको कैसे 3 लाख रुपए बनाऊं, यही एक योजना हमारे पास होती है। और ये क्या है, कल के लिए मैं 2 लाख रुपए बना दूं, लेकिन कल अगर मैं उस 2 लाख रुपए को भोगने के लिए ही नहीं होऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो वहां पर मेरे पास तो बैंक अकाउंट में कुछ पड़ा हुआ नहीं है, तो आज मैं अपना जप कंप्लीट कर लूं, आज मैं भगवान की सेवा कर लूं, ताकि मुझे वहां पर भी रहने के लिए तो कुछ ना कुछ तो फाइनेंस चाहिए होगा ना। तो वो ये मनुष्य, क्योंकि उसकी बुद्धि तमोगुणी होती है, तो ये डिसीजन नहीं ले सकता है, और वो इस बात पर कभी भी मृत्यु पर कोई विचार नहीं कर सकता। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मृत्यु ध्रुव है, हर किसी को मरना है, मनुष्य मर्त्य है, इसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते हैं, कंटिन्यू श्रम करते हैं और आत्मा की कोई चिंता नहीं करते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में, आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो मिश्रित है, रजोगुण में भी आम तमोगुण ही होता है, क्योंकि रजोगुण में भी तो हम लोग सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि हम अपनी रियलिटी को भूल गए हैं इसीलिए वो कार्य कर रहे हैं, वरना तो क्या करते थे। अगर आत्मा समझते थे तो आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करते थे ना। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यधिक आलसी होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सत्व रजोगुण और तमोगुण क्योंकि मिक्स है, तमोगुण में आप अज्ञान में होते हो, ठीक है, कोई भी अपने आत्मा के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, और अगर देखा जाए तो रजोगुण में भी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, सिर्फ शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से तमोगुण है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रजोगुण और तमोगुण में क्या डिफरेंस है? देखो, हमें जो है उस संसार में आकर 4 पुरुषार्थ जो है उसके लिए मनुष्य जीवन है, कि मनुष्य जीवन को 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने होते, कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, ये समझ में आ। अब धर्म क्या है, धर्म यानी कि भगवान की किसी की भी सेवा करना, भक्ति करना, जो मतलब भक्ति के योग्य हैं, जैसे देवता इत्यादि, उनसे कुछ मांगना अपनी फैसिलिटीज के लिए, ये भी धर्म माना जाता है। अब धर्म का मतलब वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ है आप उनकी पूजा करो जिससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। अब जो रजोगुणी होता है वो मोक्ष को नहीं देखता है, ठीक है, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष को माइनस कर देता है, खाली धर्म करता है किसके लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, काम करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, धर्म और अर्थ कमाता है इंद्र तृप्ति के लिए, यानी कि उसके जीवन में धर्म भी होता है, वो धर्म भी करता है, वो सूर्य को अर्घ भी देता है, वो है ना, कोई भी जैसे उपवास के दिनों में उपवास रखता है, सोमवार को उपवास रखता है, या इस यानी कुछ भी इच्छाओं पूरा करने के लिए वो उपवास रखता है, कुछ कुछ उसके जीवन में धर्म होता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना, वो धर्म को भी हटा देता है और मोक्ष को भी हटा देता है, उसके जीवन में क्या होता है, खाली अर्थ और काम, कैसे मैं कुछ हासिल करूं जिससे मैं भोग करूं, बस उसके, क्योंकि उसको ज्ञान होता ही नहीं है, धर्म का तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है कि ये करने से, बस कैसे मैं अपनी इंद्रिय को तृप्ति करूं, चाहे वो वाला सुख जो होगा उसका, वो शुरू से लेकर आखिर तक अंधकार में होगा। जैसे हम देखते हैं ना, जो चर्सी होते हैं, मवाली होते हैं, और वो स्टार्ट से ही वो क्या करते हैं, शुरू में भी उनको ना प्रयत्न, गंदे लोग होते हैं, और किसी तरह से इंजेक्शन लेते हैं, और यहाँ से मैं कुछ प्राप्त करूं और बस अपने जीवन को सुखी करूं, इससे मुझे सुख मिलेगा, उसको पता भी नहीं है कि ये सुख कितना उसके लिए गंदा है, कितना उसको दुखमय जीवन प्रदान कर रहा है, यानी कि उसका जीवन इतना अंधकारमय है, जो नशा करते हैं, जो आगे श्री प्रभुपाद तमोगुणी व्यक्ति के लिए विषय में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि उनकी क्या कंडीशन होती है। श्री प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग अत्यंत ही आलसी होते हैं, यानी कि वो इतने आलसी होते हैं कि जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो अधिक रुचि नहीं दिखाते। उनको काम तो करना अच्छा नहीं लगता ना। अब आप रजोगुण में रहकर भी कोई कार्य करोगे तो कार्य करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, लेकिन उनको खाली सुस्ती होती है, उनको खाली ऐसा होता है कि बस मैं कुछ भी करूं नहीं, आलस्य होता है, तो वो रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। रजोगुणी फिर भी एक्टिव रहता है लेकिन वो एक्टिव भी नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। अब आपको जहाँ पर दिखे ना कि ये ज्यादा से ज्यादा सोते, कुछ लोग होते ना सुबह उठते हैं नाश्ता खा के फिर सो जाते हैं, फिर है ना खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए इधर उधर टीवी वे देखते हैं, बाद में देखा खरोटे मार रहे होते हैं सो रहे होते हैं, इवन संध्या के टाइम पर भी सो रहे होते हैं, सारे टाइम सो रहे होते हैं, दिन उनका ऐसे गुजर जाता है सोते सोते, और रात के टाइम पर बोलते हैं नींद नहीं आ रही है, रात को जागते हैं उल्लुओं की तरह, 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जाते हैं, और 3-4 बजे जब मंगल आरती का टाइम होता है, प्रभात का समय होता है, उस टाइम पर वापस से उनको नींद आ जाती है। आगे श्रीमद् प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर 10-12 घंटे सोता रहता है। हालांकि 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सोता है, ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, क्योंकि रात से सोता रहता होता है, आलसी रहता है, कोई सक्रिय नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में आशा आ भी कैसे सकती है, भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। अब वो बुद्धि उसकी कैसे डिसीजन करेगी, जो तमोगुणी बुद्धि होगी तो वो ऐसे ही डिसीजन करेगी ना कि छोड़ो अभी ये कौन करेगा, सो जाते हैं, सोते सोते सारा टाइम गुजार देता है और फिर हमेशा खिन्न रहता है, दुखी रहता है। अब जब हम कभी भी गुणों के विषय में पढ़ते ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं, यानी हमें पता तो चल ही जाता है कि ये गुण हमारा कौन सा गुण विकसित हो रहा है, हमारी बुद्धि कौन किस तरह से डिसीजन ले रही है, लेकिन इतना जान लेना काफी नहीं है कि हमारी बुद्धि किस तरह की है या हम कौन से गुण में हैं। अगर ये जान भी लिया जाए तो जान कर क्या पता, जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि मुझे मलेरिया हो गया है या टाइफाइड हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो जान लिया उसने, इट इज इनफ, उसको उसका इलाज करना चाहिए ना कि अब मेरे अंदर ऐसे ऐसे अवगुण आ गए हैं, ऐसे ऐसी बीमारी अंदर आ गई है तो मुझे उससे छुटकारा कैसे पाना है। तो इस तमोगुणी बुद्धि से या रजोगुणी बुद्धि से या इवन सत्वगुणी बुद्धि से भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चैप्टर नंबर 14 टेक्स्ट नंबर 5, भगवान ने कहा आप चाहे किसी भी गुण में रहोगे तो बंध जाओगे। भगवान ने क्या कहा, तत्त्वम् रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्। प्रकृति के भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबा अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अब वो तीनों, जो भी तीनों में से कोई भी गुण अगर होगा तो उसमें से हम बंध जाएंगे। अगर बंध ही रहे हैं, अगर हमारी ये गुण वाली अवस्था रुग्ण अवस्था है तो इससे हमें बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने का तरीका भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 45। बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 45, भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेमम् आत्मवान। अर्थात वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं कि ये तो 3 गुण आपको बांध देंगे, इसलिए आपको समस्त द्वंद्वों से जो है और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मप्रायण, बोला ना, निर्योगक्षेमम आत्मवान, आपको आत्मा में स्थित होना है। फिर आपको कोई भी गुण, क्योंकि ये गुण किसके हैं, भौतिक प्रकृति के हैं ना। देखो भौतिक प्रकृति में मैंने आपको 24 तत्व बताए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और गुण, ये सब भौतिक प्रकृति हैं। अब जब तक हम अपने आप को इस शरीर से शरीर के साथ जोड़ के रखते हैं या शरीर से संबोधित करेंगे, शरीर से जाहिर करेंगे, तो शरीर के साथ तो ये गुण भी बनाएंगे, और जब गुण बंधे हैं तो जाहिर सी बातें हमारे बंधन का कारण बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप निकलो इन गुणों के बाहर, आप इन प्रकृति के इन गुणों से बाहर निकलो, क्योंकि वो गुणों से अगर आप लिप्त रहोगे तो क्या होगा, फंस जाओगे। तो क्या करना, भगवान ने कहा आप ये सब छोड़ दो, इन भौतिक समस्त सुरक्षा और चिंताओं से छोड़ दो, और क्या करो, आत्मवान, आत्मा में आप स्थित हो जाओ। आपको जब ये रियलाइज हो जाएगा कि आप यह शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो फिर आपको गुण कुछ भी नहीं असर कर सकेंगे। और वो कैसे होगा, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताएंगे, चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 45 का तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद शुभपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित हैं। यानी कि आप संसार के किसी भी कार्य को जब करते हो तो फिर क्या होगा, तो तीनों गुण उसके अंदर आएंगे। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। और आप जब कोई भी कार्य भौतिक स्टेज पर रह के करोगे तो उसकी बदली में आपको कर्म का फल भोगने के लिए, चाहे वो फल अच्छा भी हो तो भी भोगने के लिए आना पड़ता है। वेदों में मुख्यतः सत्काम कर्मों का वर्णन हुआ है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। यानी कि उन्होंने क्या वेदों में क्या बयान किया है कि क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता पहले आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करो करो करो, फिर ऐसे रियलाइज जब जाके कहीं हो कि दिल खट्टा हो जाए ना इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से, फिर हमें लगे कि नहीं इससे ऊपर कुछ होना चाहिए, इससे ऊपर से कुछ होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कितने जन्मों के बाद मनुष्य को ये रियलाइज होने लगेगा, हो सकता है पतन से पतन होता जाए और रियलाइज पता नहीं कब होगा। लेकिन यहाँ पर वेदों में क्या कहा गया है कि मुख्यतः सत्काम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य मनुष्य क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच जाएगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं, कहो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, के डायरेक्ट से ऊपर उठ जाओ, आप आध्यात्मिक जगह पे, आध्यात्मिक मतलब रूहानी स्टेज पे आ जाओ। अब इंद्रिय तृप्ति की स्टेज, यानी कि इंद्रिय तृप्ति तो मैंने बताया ना कि दो तरह से होती है, एक काम करके और ना करके। अर्जुन काम नहीं करना चाहता था तो बोला तुम आध्यात्मिक स्टेज पे आ जाओ, और आध्यात्मिक में आकर आपको क्या करना है, जो भगवान के आदेश है उनका पालन करना है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं जिसका प्रारंभ, अब आध्यात्मिक स्थिति आध्यात्मिक पद का प्रारंभ किससे होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब आत्म साक्षात्कार, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, यह है पहला क्वेश्चन जो हमें तीनों गुणों से बाहर निकालता है। जैसे सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने कहा, पूछा उनसे, हे महाप्रभु के आमी के में आमार चार ताप पत्र, मैं कौन हूँ और मुझे ये तीन प्रकार के ताप क्यों झुलसा रहे हैं, क्यों मुझे तंग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये कष्ट मुझे क्यों सता रहे हैं, मैंने क्या किया है। तो ये आध्यात्मिक ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। जब हम इस तरह के प्रश्न करेंगे तो आध्यात्मिक धरातल तक आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम तमोगुण में हैं या रजोगुण में हैं तो भी हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम क्यों हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। इनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश है। भगवान ने ये वैदिक दर्शन इसलिए दिया है कि आप अच्छे से जीवन गुजार सको और इन बंधनों से छूट सको। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार अवसर प्रदान किया जाता है मनुष्य को। यानी कि यहाँ पर ये कहा जाता है जब कर्म कांड की लाइफ को आप समाप्त कर लेते हो तो उपनिषद, ये श्रीमद् भगवद गीता भी तो उपनिषद है ना, तो यहाँ पर बताया कि उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। अब देखो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में कोई भी इंद्र तृप्ति के कार्य के विषय में कर्म कांड नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सिद्धांत है कि किस तरह से आप सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। ये उपनिषद विभिन्न वेदों में वेदों के अंश है, इसी प्रकार जैसे श्रीमद् भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंश है। अब डायरेक्ट से अगर वेद में देखा जाए तो कर्म कांड इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि आपको ये आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार प्रदान होगा नहीं। तो यहाँ पर शिवप्पा जी बोल रहे हैं कि ये क्योंकि पंचम वेद महाभारत का एक हिस्सा है और शिला प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर एक खास बात बता रहे हैं कि वेदों से नहीं बल्कि उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। क्योंकि वेदों में तो आपको कर्म कांड बताया जाएगा ना, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, इसकी पूजा करोगे तो ये मिलेगा, और ऐसे करते 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 क्रमशः जब आगे आओगे आप तो उपनिषदों से आपको आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। आगे शिवप्पा जी बोलते हैं, जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। क्या होगा, भौतिक शरीर है तो फिर उसके जाहिर सी बातें गुण जो हैं वो आपके अंदर आते रहेंगे। मनुष्य को इनसे दूर कैसे होना है, इनसे बचना कैसे, इसका उपाय शिवप्पा जी यहाँ पर बताने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत गर्मी जैसे द्वैताओं को सहन करना सीखे, कि जो भी आया है कर्मों अनुसार आ गया है तो उसमें परेशान होने से बेहतर क्या है कि उसको सहन करना है सुख दुख को, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाना। फिर फ्यूचर प्लानिंग की हानि होगी या लाभ उससे भी आपको मुक्त हो जाना है। आपको अपना कर्म करना है, बस कर्म करना है, और इसलिए कर्म करना है क्योंकि ये ड्यूटी आपको प्रिस्क्राइब की गई है और आपको इस कर्म के जरिए ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। बस भगवान की खुशी के लिए कार्य करना है। और ये बता रहे शिवप्पा जी, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। बस मुझे कृष्ण ने अगर सुख दिया है तो भी ओके, दुख दिया है तो भी ओके, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, जो कुछ भी ये पल है प्रेजेंट मोमेंट जो है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रेजेंट अवस्था में मैं कैसे उनकी सेवा अच्छे तरीके से करूं, यदि ये स्थिति आती है तो हम भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।